रहनुमा हमारे गुलामा, हो कभी दरपेश जो कोई मसाला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीजीन अम्मा बादु फाअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम के अहकामात सीख कर समझ कर उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने अजमत आलीशान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। अपनी मजलिसें मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना क़ियामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती मोहम्मद कफीर रज़ा तारी हैं, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। कैसे मिजाज ग्रामी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़ते हैं, हमारे पास कुछ वीडियो सवालात भी हैं, देखते हैं नाज़रीन क्या पूछ रहे हैं।
मेरा नाम ज़िशान अज़ीम है। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि आबे जमजम खड़े होकर पीना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि आबे जमजम बैठ कर पीना चाहिए, तो इसके बारे में शरई अहकामात क्या हैं, तो बराए करम इसके बारे में मुतला फरमाएं। जबकि जो नॉर्मल पानी होता है उसके बारे में भी इरशाद फरमाएं कि नॉर्मल पानी क्या खड़े होकर पी सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।
जी, इनको कुछ मिले ऐसे लोग के जो कहते हैं जमजम शरीफ भी जो है वो बैठ के पीना चाहिए, तो क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल पानी बैठकर पीना सुन्नत है और बिला उजूर खड़े होकर पीना खिलाफ सुन्नत है।
ठीक।
जहाँ तक जमजम शरीफ का ताल्लुक है तो इसको खड़े होकर पीना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम से यही साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने जमजम शरीफ खड़े होकर पिया, तो लिहाजा जमजम खड़े होकर ही पिया जाए, यही सुन्नत है और आम तौर पर कोई इससे मना भी नहीं करता। हो सकता है किसी के जहन में कोई वसवसा हो या खलिश हो तो वो जुदा बात है, लेकिन बहरहाल सुन्नत यही है कि जमजम शरीफ खड़े होकर पिया जाए और आम पानी जो है वो बैठकर पिया जाए, यही सुन्नत है।
ठीक है, यानी जमजम शरीफ तो खड़े होकर ही वैसे आम तौर पे। अच्छा, जमजम शरीफ को अगर कोई बैठ के पी ले क्या कहेंगे?
हाँ, जमजम को बैठकर पीना भी जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। खड़े होकर पीना सुन्नत है, लेकिन अगर कोई बैठकर भी पी लेता है तो इस सूरत के अंदर कोई गुनाह नहीं है, बैठकर भी पिया जा सकता।
ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जब बाद बैठकर उनसे खड़ा होना एक मुशक्कत वाला काम होता है, तो उस पर देखा है कि लोग काफी
इसरार करते हैं कि भाई नहीं जमजम पी रहे हैं आप तो खड़े ही हों। ये जरूरी नहीं है, अगर वाकई कोई शख्स ये वो खड़ा नहीं हो सकता तो ऐसी सूरत में बैठकर भी पीने में कोई हरज नहीं।
बैठकर पीने में हरमैन शरीमैन में जब वहाँ हाजिरी होती है तो आदमी चल फिर कर, और कई मरतबा ऐसे होते हैं कि बोतल या कोई ऐसी चीज जिसमें होता जमजम शरीफ ही है तो वहाँ, यानी यहाँ जो एक कतरा भी मिलता है तो आदमी बड़े एहतमाम से उसको खड़े होकर पीता है, तो वहाँ जब नॉर्मल भी रूटीन में ये चीज़ होती है तो उस पर आप क्या कहेंगे?
लेकिन वहाँ चाहिए तो यही कि ज्यादा से ज्यादा जमजम ही पिया जाए। बंदा वहाँ जमजम ना पिए तो फिर कहाँ पिए?
कहाँ पिएंगे?
और जमजम पेट भरकर जो है वो पीना चाहिए, तो हत्तल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि वहाँ आप पानी जमजम ही पिए, चाहे मक्कतुल मुकर्रमा में चाहे मदीना मुनव्वरा के अंदर हो, तो अपनी बोतल जो है वो आप भर के ले जाए, होटल के अंदर भी पिए तो वही जमजम का पानी ही पिए, तो उससे ज्यादा बाबरकत पानी जो है वो और कोई नहीं है, तो लिहाजा उसमें भी एहतमाम करना चाहिए। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर किबला रुख होकर और जो है वो खड़े होकर सुन्नत के मुताबिक पीना चाहिए।
जमजम में काफी मिक्स भी पानी हो जाता है, अब हम इस तरफ भी आ जाए, ये कहें कि 1/3 कहें या उसका भी 4 कहें या कहीं 10वां हिस्सा कहें, पानी असल जमजम शरीफ का होगा बकिया दूसरा पानी, तो अब इसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा?
देखिए, खालिस जमजम का हुक्म ये है कि वो खड़े होकर पीना सुन्नत है। अब अगर मिलावट है और हमारे यहाँ जो अमूमन उसके अंदर दूसरा पानी मिलाया जाता है वो ज्यादा ही मिलाया जाता है। अमूमन आजकल आपको भी मालूम है कि आने वाले 5 लीटर का जो है वो एक कैन लेकर आते हैं, तो अब देना पूरे खानदान के अंदर जो है वो होता है, तो वो उसके अंदर समझें कि अच्छा खासा लोग पानी जो है वो दूसरा मिला लेते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो, जबकि पानी दूसरा ज्यादा गालिब उसके अंदर मौजूद है, तो बैठ कर जो है वो पिया जाए
मिलाने में तो कोई मसला नहीं है, वरना पूरा कैसे करेंगे?
जी। यानी ये मिलावट जो है वो सबको मालूम ही होती है। हाँ, आप खालिस जमजम कहकर किसी को ना दें फिर, कि वो फिर झूठ हो जाएगा। बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो मिलाते भी हैं लेकिन बाज देने वालों के लिए वो खालिस भी रखते हैं, कि मुफ्ती साहब के पास लाए कि मुफ्ती साहब ये आपके लिए खालिस जमजम लेकर मैं आया हूँ, यूं भी करते हैं। तो उसमें भी हरज नहीं और मिलाने में भी कोई हरज नहीं है। जब मिलाएंगे तो फिर बहरहाल देने वाले को खालिस कहकर ना दें, या आपकी बोतल के ऊपर खालिस जमजम ना लिखा हुआ हो।
ठीक है, नॉर्मल जमजम शरीफ। जाहिर है वो भी घर में, घर वाले भी आगे जाकर उस छोटी बोतल को किसी जग
बड़ी
में
बोतल में डाल
डालकर
देते हैं
या
और
कुछ
बरकत के लिए
सब
रख
घर
देते
वालों
हैं।
को पिला देते हैं, तो ये ठीक है। लेकिन इसमें और आमतौर पे कोई ऐसा बोलता भी नहीं और लोगों को पता भी होता
जी
है। पहले तो काफी वाफर और कई बोतलें लोग लेकर आते हैं, अब एक पासपोर्ट पे एक ही बोतल वो मिलती है, और बाद का तो एयरपोर्ट पे वो भी आगे पीछे हो जाती है।
जी
और उसमें अभी मुझसे कोई मसला ही पूछ रहा था, जमजम की बोतलें जो है वो आपस में मिक्स हो जाती हैं, बोतल एक तरह की होती है, तो कई लोगों ने दूसरों की बोतलें उठाई, अब जो हाथ में आ रही कि उठा रहा भाई ये, तो अब वो कह रहे कि आखिर में कुछ बोतलें बची हैं अब हम, लेकिन नाम किसी और के लिखे हुए थे तो हमने फिर उठाना मुनासिब नहीं समझा, और यानी पानी के बगैर आ गए, तो क्या तरबियत करेंगे इस टॉपिक पर, इस मौजू पर, के जो लोग आ रहे हैं वहां से और उम्रा करके आ रहे हैं, हज करके आ रहे हैं, ज़ाहिर बोतलें इतनी होती हैं तो जो भी हाथ में है वही उठा के चले जाएं या अपनी का इंतजार करें?
देखिए, बोतल जबकि वहां पर हैंडओवर कर दी जाती है और फिर उसके ऊपर हुज्जाजे कराम या जो भी उम्रा जायरीन है वो अपना नाम नंबर वगैरह भी लिख लेते हैं। अब वो उनके कब्जे में आने के बाद उनकी मिल्कियत हो जाती है, तो अब बहरहाल उसे दूसरा शख्स उनकी इजाजत के बगैर नहीं ले सकता। अब अगर हमें कोई भी बोतल मिलती है, भले उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ लेकिन हमें पता है कि वो हमारी नहीं,
सही।
तो ऐसी सूरत के अंदर तो हम उसे नहीं ले सकते कि वो लुकता है। लुकते का हुक्म ये है कि आप अव्वलन तो उठाए नहीं, अगर आपने उठा लिया है तो अब बहरहाल मालिक को तलाश करके उस तक वो चीज पहुंचानी होगी। ये चीजें अमूमन मुमकिन नहीं होती, गुमशुदा
यानी गुमशुदा माल की तरह होती।
माल की तरह है। और अब आपने उठा लिया, ऐलान भी किया, मिसाल के तौर पे आपको पता था कि भाई हमारी फ्लाइट में हमारे ग्रुप के लोग थे, कारवान का कोई वो बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप, आपने उसमें कह दिया कि भाई ये मिली हैं इसकी है, राबता कर लें, और किसी ने राबता नहीं किया और गालिब गुमान आपको हो जाए कि अब इसका मालिक इसे तलाश नहीं करता होगा, तो अगर आपने इसीलिए उठाई थी कि मैं मालिक तक पहुंचाऊंगा, तो फिर ऐसी सूरत में अगर आप खुद जो है मुस्तहिक ज़कात हैं तो खुद भी आप इस्तेमाल कर सकते
ठीक
हैं और किसी दूसरे मुस्तहिक ज़कात को सदका भी कर सकते हैं। तो ये फिर अहकाम होंगे। तो बहरहाल कई लोग बसा औकात उस चीज के नेकी या बरकत वाले होने को पेश नजर रखते हुए बकिया अहकाम शरा को भूल जाते हैं कि जनाब ये तो जो है ना वो तबर्रुक मिल रहा है। तो तबर्रुक मिल रहा है लेकिन तबर्रुक भी लेना अपने जायज तरीके से ही
ठीक है।
है, तो लिहाजा जायज तरीका ही इख्तियार करें और उसी के जरिए से तबर्रुक लें, जब भी वो बरकत का बाइस भी जो है वो बनेगा, वरना आपका वो लेने का जरिया जो है वो आपके लिए नुकसान का बाइस आखरत में बन
बन
सकता है।
सकता है, उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। और जब इस तरह के रश होते हैं तो यहाँ पे कुछ न कुछ इस तरह के मामलात भी हो जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम नाहक तरीके से कोई भी किसी की चीज ना लें। जी, मजीद बढ़ते हैं आपके सवाल।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है, मैं एक यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, हम वहाँ बाकायदगी से हर साल महफिल मिलाद का इतमाम करते रहे हैं, कुछ अर्सा तो हर महीने भी ये सिलसिला हमारा जारी रहा, लेकिन 2-3 साल से कुछ हालात ऐसे हो गए कि वहाँ पे महफिल मिलाद करवाना हमारे लिए जो ना वो इम्पॉसिबल हो गया हुआ है। तो मेरे पास कुछ फंड इकट्ठा किया हुआ है महफिल मिलाद की मद में, वो लास्ट 3 साल पहले जो महफिल मिलाद करवाई थी उसी के लिए पैसे इकट्ठे हुए, कुछ स्टूडेंट्स के थे, कुछ पुलिस के थे, यानी हमने उसकी मिलाद की मद में इकट्ठे किए हैं पैसे, वो पैसे कुछ बच गए हुए हैं। अब ये पूछना था कि वो पैसा हम कैसे यूटिलाइज करें, उसको किस तरह जो है ना वो खर्च किया जाए। बहर में फरमाइए, जज़ाकअल्लाह।
जी, मिलाद के नाम पे इकट्ठे किए थे, अब जिस जगह पे है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है फिलहाल।
देखिए, चंदे का हुक्म यही है कि आपने जिस काम के लिए चंदा किया है उसी काम में वो इस्तेमाल किया जाएगा। बच जाने की सूरत में जो चंदा देने वाले हैं आप उनको वापस करते हैं, या फिर उनकी इजाजत से आगे आप किसी और जगह इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर तो मुमकिन है कि भाई वो अफराद मौजूद हैं जिन्होंने चंदा दिया था, तो आप उनसे इजाजत ले लें। अब वो कहते हैं कि भाई ये पैसों से आप कहीं बाहर महफिल मिलाद कर लें, या यूनिवर्सिटी की मस्जिद के अंदर ये पैसे दे दें, या और किसी नेक और जायज़ काम में खर्च कर दें, तो उनकी इजाज़त के मुताबिक आप खर्च कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो अफराद मौजूद नहीं है, बज़ाहिर ऐसे ही लगता है यूनिवर्सिटी में 3 साल पुरानी बात है, तो जो स्टूडेंट्स होंगे वो बाहर चले गए होंगे।
जी बिल्कुल।
तो अब इसका तरीक़ेकार ये भी हो सकता है कि बसा औकात आपने यूनिवर्सिटी की बड़ी सतह के ऊपर महफिल मिलाद नहीं कर सकते, लेकिन यूनिवर्सिटी की मस्जिद के अंदर आप महफिल मिलाद कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में क्लास सतह के ऊपर आप महफिल मिलाद कर सकते हैं। तो उस सतह के ऊपर आप महफिल मिलाद करके उन पैसों को जो है वो उसके अंदर इस्तेमाल कर लीजिए। कोई भी चीज़ मुमकिन ना हो तो फिर बहरहाल आखिर यही आएगा कि उस रकम को जो है वो आप किसी भी नेक और जायज़ काम के अंदर खर्च करेंगे,
इसी तरह की कोई और
और किसी तरह की महफिल मिलाद के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर चाहे यूनिवर्सिटी से बाहर की तरफ भी हो।
ठीक है, यानी अगर वहाँ जहाँ तक मुमकिन है तो वो सूरत इख्तियार कर ली जाए, वरना फिर आप इसको बाहर कहीं मिलाद शरीफ की जो महफिल है तो उसमें इस्तेमाल कर लें। अगर खास कोई ऐसे अफराद हैं जिनका पता है तो फिर उनसे इजाज़त ले।
जी, जब पता है, या यूँ भी होता है कि बसा औकात ये पता है कि भाई इस में से मिसाल के तौर पर 75% जो है वो डोनेशन इन अफराद ने दिया था, तो आप उनसे इजाज़त लेकर उस डोनेशन का 75 जो है वो एक तरफ कर लेंगे तो उसमें बड़ी आसानी हो जाएगी आपको। बाकी 25% को हो सकता है कि आप क्लास सतह के ऊपर होने वाली महफिल मिलाद में इस्तेमाल कर लें तो वो खर्च हो जाए और वो ना बचे, तो यूँ किया जा सकता।
ठीक जी, मजीद सवाल।
मोहम्मद अरसलान अत्तारी, मतनतुल उलिया, मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मुफ्ती शफीक साहब, आपसे मेरा ये सवाल है, जमात के बगैर फर्ज नमाज 4 रकात वाली अदा कर रहे हों, गलती से 4 के बजाय 3 पढ़ ली जाए, एक सलाम फेर रहे हों सीधे हाथ की तरफ तो याद आ जाए कि हमने जो 4 रकात पढ़नी थी, तो उस सूरत में क्या हुक्म होगा, दोबारा से नमाज पढ़नी होगी या उसी बस वहीं से खड़े होकर दोबारा से कंटिन्यू करनी होगी, इस बारे में कुछ मतनी फूल इरशाद फरमाएं।
एक सलाम फेरा है, अभी पूरी नमाज से मुनकते नहीं हुए, ना कुछ और ऐसा काम किया, और 3 रकतों पे सलाम फेर लिया।
देखिए, अगर सलाम जल्दी फेर लिया, 4 रकात पर फेरना था या 2 रकात पर फेरना था या मगरिब में 3 पर फेरना था, 2 पर जो है वो फेर लिया, तो अभी जब तक आपने कोई ऐसा अमल नहीं किया जो नमाज को फासिद करने वाला है, तो आप अपनी नमाज को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं।
सही।
तो अभी एक तरफ सलाम फेरा, बल्कि दोनों तरफ भी सलाम फेर दिया, और फौरन फेरते ही याद आ गया आपको कि जनाब मैंने अभी तो 2री रकात पर सलाम फेर दिया है, या 4 रकात पढ़नी थी मैंने 3री पर फेर दिया, तो आप खड़े हो जाएं और खड़े होकर अपनी बकिया रकात अदा कर लें और आखिर में सजदे सहव कर लें, तो यूं आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। हाँ, अगर आपने सलाम दोनों तरफ फेरने के बाद कोई ऐसा अमल कर लिया जो कि नमाज को फासिद कर लेता है, मसलन पीछे पूछ ही लिया आपने, हाँ भाई कितनी रकतें हुई हैं,
सही,
तो अब आपकी नमाज
कर ली, कोई भी कर ली,
तो अब आपकी नमाज टूट जाएगी, अब आपको दोबारा नए सिरे से ही नमाज पढ़नी होगी। और अगर ऐसा कोई अमल नहीं किया जो नमाज को फासिद करने वाला हो, तो बस आप अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएं, बकिया रकात अदा करें, आखिर में सजदा सहव करें, तो आपकी नमाज मुकम्मल हो जाए।
ठीक है, यानी इसमें आसानी है कि भले सलाम भी फेर लिया, अभी तक कोई गुफ्तगू नहीं की, नमाज तोड़ने वाला कोई अमल नहीं किया हुआ, वैसे नमाज पहले से ही तवज्जो से पढ़नी चाहिए, सलाम फेरते ही याद आ गया कि 1 रकत वो रहती है, अच्छी बात है। अगर इमाम साहब हैं तो उनको और ज्यादा इन मामलात के अंदर मुतवज्जे रहना चाहिए कि बाज़ औक़ात वो गलती तो ज़ाहिर इमाम साहब से भी हो जाती है, लेकिन अगर गलती का इजाला दुरुस्त तरीके से हो गया तो फाबिया, वरना कई जगहों पर ऐसे है कि लुकमे कोई देते हैं, पीछे वाला कोई बताता है तो वो इमाम साहब खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसी गलती हो जाती है कि नमाज ही दोबारा पढ़नी पड़ जाती है। तो शुरू से ही हम अगर तवज्जो रखेंगे इन मामलात के अंदर तो फिर इंशाल्लाह नमाज भी दुरुस्त तरीके से अदा होती रहेगी। कुछ ऐसे में से बढ़ते हैं जी उनकी तरफ। एक सवाल यह है कि गैर हाजी को हाजी कह के पुकारना कैसा?
दुरुस्त नहीं है, हाजी को हाजी कहकर पुकारेंगे, गैर हाजी को हाजी कहना दुरुस्त नहीं,
गैर हाजी को हाजी कहना। एक और सवाल आया भी, इसलिए हमारे किसी और दारुल तक से अलग से प्रोग्राम के अलावा, तो उसमें यह आया कि जिन चीज़ों पे ये हज की फजीलत मिल जाती है, वालदैन को मोहब्बत की नज़र से देखें, इशा को चाश की नमाज है, हज उमरे का, तो वो भी अपने आप को हाजी कहना शुरू कर?
नहीं, वो अपने आप को हाजी नहीं कह सकता कि वो तो हज का सवाब जो है वो मिलता है, लेकिन हज जो कि फ़र्ज है या नफिल भी किसी ने अदा किया है तो बहरहाल वो हाजी नहीं, हाँ जब तक उसने वो किया नहीं
तो करने वाला नहीं है,
करने वाला नहीं है तो वो हाजी नहीं है। और उर्फ के अंदर भी हाजी उसी को कहा या समझा जाता है जिसने हज का फरीजा सरंजाम दे लिया हो, लिहाजा जिसने हज नहीं किया तो उसे हाजी हरगिज ना कहा जाए।
बारिश की वजह से कब्र गिर गई है तो कैसे ठीक करें? मैं यहाँ नाजरीन से यही कहूंगा कि बारिश के बाद अमूमन आप कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाएं, अपने प्यारों की उन कब्रों पर आप पहुंचे, देखें इस साले सवाब भी करें, अगर तो दुरुस्त समत पे ठीक है, अगर नहीं है तो ज़ाहिर है फिर जो उसको सेट करना है, रिपेयर करना है, वो काम करें, साले सवाब भी उनको करना चाहिए, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए। कि बाज़ लोग कब्रिस्तान से आकर बताते हैं कफील साहब के वाकई कि लोग जाते नहीं हैं कब्रों पर, या जिनके काफ़ी वक्त हो चुका है,
गुजर जाता है
तो बज़ाहिर सालों गुजर गए, और फिर गोरकुन भी नज़र में रखते हैं कि ये कब्र वाले नहीं आ रहे ना इनके, वो फिर कई और ही मैयत उसके अंदर डाल देता है, क्या कहेंगे आप सेट कैसे करें?
कब्रिस्तान के अंदर यकीनन जाना चाहिए, हर जुमे को जो है वो बंदा हाजिरी दे। अब अगर कब्र बारिश की वजह से या और किसी भी मौके के ऊपर जो है वो दब जाती है तो हत्तल इम्कान कोशिश ये हो कि मुर्दा का जिस्म या कफन जाहिर हुए बगैर उसकी जिस तरह दुरुस्तगी मुमकिन हो, दुरुस्ती मुमकिन हो वो करें। इसके लिए बसा औकात ये होता है कि आप ऊपर से कोई मजीद लैंटर रखकर उसके ऊपर आप नई स्लेपे रख दें और फिर पुरानी स्लेपों को इस तरीके से निकाल लें कि कब्र जो है वो या मुर्दा जो है वो जाहिर ना हो,
ठीक।
और ऐसे मौके के ऊपर इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि नेक परहेजगार लोगों की मौजूदगी के अंदर ही ऐसा काम किया जाए,
ठीक,
जो इस बात की टो या तलाश में ना हो या कैमरा लेकर ना हो कि नहीं जनाब कब्र के अंदर क्या हो रहा है, वो इस चीज़ को जो है वो देखें, ये जो है वो दुरुस्त नहीं है। बरज़ख के मामलात हैं, जब कब्र मुर्दे को हम दफना देते हैं, कब्र ढक दी जाती है, बंद कर दी जाती है, तो अब ये बरज़खी मामलात शुरू हैं,
ठीक।
अब इनके अंदर जो है वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, अब जाहिर करने के लिए या इतला पाने के लिए इन चीज़ों की तरफ नज़र नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आप कब्रिस्तान में गए हैं, अगर कोई कब्र खुली हुई है तो उसके अंदर भी झांक कर नहीं देखना चाहिए। तो बहरहाल इसी तरह का एहतमाम करें। बाज लोग धसी हुई कब्र के अंदर और ऊपर से मट्टी डाल के पूरे उसको जो है वो दाब देते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। तो हत्तल इम्कान यही कोशिश की जाए कि जो मट्टी वगैरह नीचे गिर गई है उसे इस तरीके से बाहर निकाल लें या स्लेब को बाहर कम अज कम निकाल लें कि जिससे मुर्दा भी जाहिर ना हो और स्लेब भी बाहर आ जाए। फिर अगर वो स्लेब टूट गई है तो आप दूसरी नई स्लेब वगैरह लगाकर दोबारा कब्र की मरम्मत कर,
ठीक है। और ये अगर चीज पॉसिबल नहीं होती, मुमकिन नहीं होती, और उसका फिर आखिरी हल यही है कि मट्टी वगैरह से ही पूर कर सकते हैं,
हाँ, फिर वो सबसे लास्ट जो है वो ऑप्शन है कि फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो उसके अलावा कोई चारेकार नहीं है, इर्द गिर्द की जगह भी जो है वो बैठ गई है कि उसके ऊपर आप नई स्लेपे भी नहीं रख सकते,
हाँ, वो तो फिर पूरा इंकशाफ होगा पूरी,
तो फिर जो है वो ऐसी सूरत के अंदर आप मट्टी डाल सकते हैं,
ठीक है। ये बिल्कुल बजा फरमाया कि इसमें ज़ाहिर कई मरतबा होता है कि मैयत के अहवाल, एक तो होते हैं कि ज़ाहरी अहवाल और एक है उसके बरज़खी अहवाल, हम तो नहीं जानते ना मैयत किस हालत में, किस कैफियत में, चाहे बज़ाहिर उसका जिस्म
कहें कि खत्म हो चुका हो, एक हड्डियों का ढांचा रह गया जैसे कहें, कई कपड़ों में निकलता है, हम उसको किसी के बारे में हम बदगुमानी थोड़ी करेंगे। ये तो एक हकीकत है और ऐसा होना है। ऐसा नहीं है कि हाँ अल्लाह पाक अपनी रहमत से कईयों के जिस्म भी सलामत रखेगा, और वो जिस्म सलामत रहने वालों को भी बयान किया गया, नबियों के जिस्म सलामत रहते हैं अल्लाह की रहमत से, और शुहदा के जिस्म भी, और इसी तरीके से औलिया के, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के, ऐसे से कई वाकयात मिलते हैं, कब्र खुल गई और जिस्म को देखा गया। अच्छा, हुफाज़े किराम कुरान पाक के हाफिज, इनके जिस्म, इसी तरह और भी, तो जिनके अल्लाह की रहमत से सलामत रहेंगे फाबिया ठीक है, लेकिन जिसका जिस्म सलामत नहीं तो उसके लिए ये बदगुमानी हरगिज नहीं हो सकती, ना ही करनी चाहिए कि ये कोई अजाब में मुबतला हो गए, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आपने कोई वाक्य ही जमीनी कोई जानवर देख भी लिया, बिलफर्ज आपने कीड़े मकोड़े सांप, वो जो कब्रों में आमतौर पर क्या न्योला क्या
बिज्जू
है,
बिज्जू
होते हैं कि वो
कब्र को जो खोद देते हैं,
उसका काम ही कब्र खोदने के एक दूसरे में, अब ये देख भी ले रहे तो इसको आप ये ना कहे कि मैयत पर ये अजाब है या इस तरह के, जो हदीसों में कहा गया ठीक है, उसके अपने एतबार से वो क्या है उसकी सूरत हम नहीं जानते, जो कुछ अजाबात उसमें बयान किए गए। ये इसलिए बतौर खास अर्ज कर रहा हूँ कि कभी किसी के कब्र के साथ ऐसा मामला हो तो फिर आप उनके अहले खाना को या दीगर को बताकर ये तकलीफ पहुंचाएं, ये हरगिज जायज नहीं है। और ना हमें, बल्कि तो हमें तो ये भी कहा गया, जो मैयत को गुस्ल देते हैं, मैयत को जो गुस्ल देने वाले अफराद हैं, वो अगर मैयत के किसी जिस्मानी ऐब पर मुत्तले होते हैं कि जो सारी जिंदगी उसने छुपाया ऐब, तो अब गुस्ल के वक्त आपने उस ऐब को देख लिया, तो ये ऐब भी छुपाने का हुक्म है। ये ऐसा थोड़ी कि वो मैयत की ये चीज हम दूसरों को बताते रहे, तो इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। बस ये सवाल।
मेरा नाम हमजा है। मम्मा और पापा दोनों बुलाए तो किसके पास पहले जाना चाहिए, मम्मा के पास या पापा के पास?
अरे वाह भाई, मम्मा और पापा दोनों बुलाएंगे, ये तो फैसला आपने खुद ही कर लेना है। पैसे कहाँ से मिलेंगे, मम्मा से मिलेंगे पापा से मिलेंगे, जब ऐसा मौका होगा तो ये खुद ही चले जाएंगे कि आप इस वक्त मम्मा के पास जाना मुफीद है और इस वक्त पापा के पास। और अगर पिटाई के लिए बुलाएं तो भी इनको पता है कि आप कहाँ जाना चाहिए, ये एक गुस्से से बुला रहा है तो दूसरी तरफ ये जाएंगे। खैर, इन्होंने जिस पैराए में सवाल किया है तो क्या करना चाहिए, औलाद को क्या करना चाहिए?
देखिए, अमूमन एक ये है कि भाई जिसने पहले बुलाया है उसके पास पहले जाएं, ये जिसको ज्यादा जरूरत है। अब इतना छोटा बच्चा है, उसे अभी पता नहीं है कि वालदैन किस लिए बुला रहे हैं। बसा औकात वालिदा को या वालिद को कोई जरूरत होती है बहुत ज्यादा किसी चीज के पकड़ाने की, कोई चीज लेने की, उस एतबार से उन्होंने आवाज दी। तो अंदाजा है हमें कि भाई इस वक्त जो है वो वालिद को ज्यादा जरूरत है या वालिदा को ज्यादा जरूरत है, तो उस वक्त उसकी तरफ जो है वो जाया जाए। और ये भी साथ में हो सकता है कि आप एक तरफ बढ़ें और साथ में दूसरी तरफ आवाज लगा दें कि बस मम्मा मैं आ रहा हूँ, बाबा की बात सुनकर जो है वो आपके पास आता हूँ, तो यूं भी किया जा सकता है।
ये बैठे हुए कहाँ है, ये कि यानी ये मम्मा से भी दूर बैठे हुए और पापा से भी दूर बैठे हुए, बेटा आप किसी एक के पास बैठ जाए या पापा के पास बैठ जाए, या अकेले यूं बिला वजह ऐसे दूर दूर ना माँ बाप से बैठा करें। बहरहाल बच्चे का सवाल है, लेकिन बड़ों को बहुत कुछ समझा गया और बड़ों के सीखने समझने के लिए ये भी चीजें जाहिर है शरी अहकामात होते हैं इसमें भी, और कई एतबार से शरीयत मुतहरा ने इनके वो फर्क को भी बयान फरमाया गया। कहीं खिदमत का मौका होता है तो वहाँ माँ को तरजीह दी है, ताजीम का मामला होता है तो वहाँ बाप को वालिद को तरजीह दी है। अच्छा, बाद का तो वालदा भी यही पसंद करेगी कि वालिद की इताअत की जाए
जी,
और क्योंकि वो खुद आप की जो वालिदा हैं तो वो भी आपके बाबा की कोई बात होगी तो वो सुनने के लिए आ जाती होंगी, खिदमत करेंगी, पानी देंगी, चाय देंगी, कुछ और इस तरह, तो ये मामला सब देखकर इस तरह का बैलेंस रखना चाहिए। माँ बाप में से दोनों में से किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए, ऐसा ना हो कि आदमी सिर्फ माँ की तरफ आए और वालिद को बिल्कुल एक किनारे पर छोड़ दे, या वालिद की तरफ रागिब हो और माँ को तकलीफें पहुँचाने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने माँ बाप की आंखों का तारा बन के रहना चाहिए, उनकी खिदमत भी करते रहना चाहिए। अल्लाह अमर की तौफीक दे। मजीद सवाल।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, किसी ने जोहर की सुन्नतें जमात से पहले नहीं पढ़ी, क्या वो जमात नमाजियों की करवा सकता है? इसके बारे में शरी रहनुमाई फरमा दीजिए।
जी, सुन्नत मौकदा को तर्क करके,
सुन्नत मौकदा जोहर की जिसने तर्क की है, बेहतर ये है कि ऐसा शख्स जमात ना करवाए, उसके मुकाबले में वो शख्स जो ये सुन्नत अदा कर चुका है और शराइत इमामत भी उसमें पूरी पाई जाती है, वो करवाए, या फिर इसका इंतज़ार किया जाए कि ये अपनी सुन्नत अदा कर ले और फिर जमात करवाए। अलबत्ता अगर किसी ने इसके बरअक्स भी कर लिया कि सुन्नतें नहीं पढ़ी थी और जमात करवा दी, तो बहरहाल नमाज हो जाएगी,
जमात हो जाएगी। दुरूद पाक का शॉर्टकट लिखना कैसा?
दुरूद पाक का शॉर्टकट जो है वो सौद की सूरत में या सलाम की सूरत में या एस डब्ल्यू की सूरत में लोग लिखते हैं, ये दुरुस्त नहीं है, हराम है। दुरूद पाक जब भी लिखना हो, जब भी जो है वो पढ़ना हो, तो मुकम्मल दुरूद पाक लिखा और पढ़ा जाएगा, इसका मुख्तसर करना ये हराम है और सख्त महरूमी का बाइस।
हिजरी साल मुहर्रम शरीफ ही से शुरू क्यों होता है? हिजरी साल मुहर्रम शरीफ से, हिजरी साल शुरू से ही, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी तो अब ये हिजरत के साल शुरू हो गए थे। अब पहले तो याद रखा जाता था, कोई बड़ा बड़ा वाकया होता था तो सहाबा साल को यूं याद रखते थे, यानी जिस साल हिजरत की तो ये एक पूरा साल इस तौर पर मशहूर हो गया। अगले साल गज़वा बदर हुआ तो बदर वाला साल, उससे अगला साल गज़वा उहद हुआ तो उहद वाला साल। अब जैसे जैसे बड़े वाकयात होते थे तो यूं इसको देखा, और हज वाला साल, हुदैबिया वाला साल, इस तरह याद किया जाता था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से ज़ाहिरी विसाल फरमाया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर दी अल्लाह तआला अन्हु, तो अब यूं ही साल याद रखा जाता था कि नबी पाक के विसाल के बाद पहला साल, दूसरा साल, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत का पहला साल, दूसरा साल, ये ऐसे सिलसिला जारी था। फिर हज़रत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, तो फिर आपने एक जो सहाबा से एक बाहमी मुशावरत करके ये चीज तय फरमाई के हिजरत का जो हिजरी सन है इसको भी बकायदा साल इसका बनाया जाए, आगाज भी हो, इख्तिताम भी हो, और उसमें कई तरह की हिकमतें हैं। ज़ाहिर है कि जो खुलफाए राशिदीन इस तरह दुनिया भर के लोगों में मुसलमानों की तरफ अहकामात भेजा करते थे, कई और चीज़ें होती हैं, तो एक साल का हिसाब किताब रहे ताकि ये मामलात इस साल में हैं, फिर अगले साल जो भी मामलात हैं, तो ये एक चेक बैलेंस और सारे मामलात हों और हिजरी सन का बकायदा इजरा हो, तो ये सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उन्होंने किया। हाँ, ये मुहर्रम से ही क्यों किया, इस पर फिर मुख्तलिफ मुशावरत होती रही साहबा की आपस में कि क्यों करना है, हिजरत मुहर्रम से ही क्यों करें। तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब साहबा से मुशावरत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी तो आप मदीना मुनव्वरा में जब पहुंचे थे तो वो रबीउल अव्वल का महीना था, लेकिन जो हिजरत के आगाज थे वो मुहर्रम से हुए। दूसरी एक तरजीह की वजह यह थी कि हज के बाद जो पहला महीना शुरू होता है तो वो मुहर्रम, यानी जुलहज्जा के बाद मुहर्रम, तो हज में चूंकि लाखों मुसलमान आएंगे और आइंदा भी आते रहेंगे, तो ये जब दें यहाँ से मामलात लेकर अपने अपने इलाकों की तरफ जाएं तो वो पहला महीना गोया के मुहर्रम का हो, जिससे आगे नई अहकामात का इजरा हो। तो कई तरह की ये मुशावरत के बाद ये तय हुआ कि मुहर्रम हराम शरीफ से ये साल का ये आगाज हो, तो यूं ये हिजरी सन का जो आगाज ये हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर फारूक की कई खसूसियात हैं
जी,
और ऐसे ऐसे बाज कारनामे होते हैं, बाज काम ऐसे होते हैं वैसे रहती दुनिया तक याद रहते हैं, क्या कहेंगे आप?
हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के यकीनन आपके वो कारनामे हैं जो कि सियासत के अंदर,
हाँ,
और रियासती उमूर में आज तक जो है वो
लिखे पढ़े जाते हैं
और उनके ऊपर अमल, यानी उनका आगाज आपने फरमाया, उसके मूजिद जो है वो आप हुए, और आज तक चाहे वो इस्लामी ममलिकतें हैं या गैर इस्लामी ममलिकतें, उनके अंदर वो निज़ाम जो है वो चल रहे हैं, जैसे खतो किताबत का जो लिए जो आपने पूरा निज़ाम जो है वो बनाया, इसी तरह मुसाफिरों के लिए सराय जो है वो बनाए गए, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके दौर के अंदर जो है वो शुरू हुई और आपका ये पूरा जो है वो हुआ। पिछले दिनों में एक तारीख पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था सिकंदर आजम बड़ा मशहूर है कि उसने इतना जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा फातह है और उसने सबसे ज्यादा जगह जो है वो फतेह की रकबे के एतबार से,
तो उसको फिर कंपेयर किया होता है तुम्हारे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर जो इस्लामी फुतुहात हुई वो सिकंदर आजम के रकबे से भी ज्यादा है।
अल्लाह,
तो तौर पर जो है वो हम अपनी तारीख से जो है वो नावाकिफ हैं, और नावाकिफ हैं तो जो हमें गैर मुस्लिमों की तारीख पढ़ाई आती है हम उन्हीं को हीरो समझ रहे होते हैं। हालांकि हकीकतन जो है वो हमारे हीरोज जो है वो मुसलमान जो है वो खुलाफा हैं, हुक्मरान हैं, और उनके वो कारनामे भी हैं। बस बात यह है कि उसको उजागर करने की हाजत है और आगे अपने नस्लों तक पहुँचाने की और बयान करने की हाजत।
माशाल्लाह जी, मजीद सवाल
सब की बारगाह में अर्ज है कि पिलरों के दरमियान, सुतूनों के दरमियान जो है वो नमाज पढ़ना कैसा है? तो अगर यहाँ पे साफ बनाई जाए और कोई नमाज पढ़े तो उसकी नमाज वाजिबुल अदा होगी या नमाज उसकी हो जाए?
मजीद
सवाल ये है, ये खवातीन एक ऑपरेशन करवाती हैं जिसके बाद उनकी माँ बनने की सलाहियत खत्म हो जाती, तो क्या ये हराम है ऑपरेशन करवाना, और इसके दीनी व दुनियावी क्या नुकसान है?
मजीद
आपकी बारगाह में सवाल है कि मेरी सासू माँ जो हयात बैठी है और मैं उमरे के लिए जा रहा हूँ मक्का मदीना शरीफ, तो आपसे ये इल्तिजा है कि आप वो इसाले तो आप हम जो हयात बैठी हैं उसके लिए उमरा कर सकते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा।
जी हज बदल तो होता है, अब बदले उमरा भी है कोई या इसाले सवाब का?
इसाले सवाब का उमरा किया जा सकता है, यानी उमरा आप अपना ही करते हैं उसका सवाब जो है वो इसाल करते हैं, और इसाले सवाब जिस तरह मरहूमीन को कर सकते हैं इसी तरह जिंदा अफराद के लिए भी कर सकते हैं। तो आप अपनी सास के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी अहलिया के लिए, अपने वालदैन के लिए सबको उसका सवाब इसाल कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं।
हाँ, ये फर्क समझना चाहिए कि वो जो हज बदल के खास अकाम है कि उसमें आदमी उसकी तरफ से ही एहराम की नियत करता है, सारे मनासिक
तमाम जो अहकाम होते हैं वो उसी की तरफ जो है वो अदा होते हैं, खर्च भी वो बर्दाश्त करता है, तो वो जुदा अहकाम हैं, और वो भी जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए हो सकता है।
जाहिर है अपनी
अगर जिंदा ऐसा शख्स है कि जो वाकई हज पर जाने के लिए बिल्कुल भी कादिर नहीं है लेकिन माली एतबार से उसके ऊपर हज फर्ज हो गया था तो अब वो किसी को भेजेगा, तो वो भी जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए हो सकता है। और इसी जो इसाले सवाब वाला मामला है वो भी जिंदा अफराद के लिए भी हो सकता है। लोगों के जहनों में कॉन्सेप्ट होता है कि नहीं यार जिंदा के लिए करने का मतलब ये कि ये जो है वो गुजर ही आएगा, तो ऐसा नहीं है, आप जिंदा अफराद को भी इसाले सवाब कर सकते हैं। और सिर्फ उम्रे का ही नहीं, वैसे भी आप कोई भी तिलावत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, कोई सदका व खैरात कर रहे हैं, तो इन चीजों का सवाब भी आप जिंदा अफराद के लिए कर सकते हैं।
यानी जिंदा को भूलना नहीं चाहिए, जिंदा के लिए मगफिरत की दुआ करें तो भी लोग यानी
परेशान हो जाते हैं कि जनाब क्या हुआ, क्या गुजर गए हजरत, तो उनके लिए मगफिरत की दुआ भी कर सकते।
ठीक है, खवातीन औलाद ना होने के हवाले से जो ऑपरेशन करवाएं,
ठीक है, बच्चा दानी निकलवाने का ऑपरेशन ये हराम है, इसकी हरगिज इजाजत नहीं है कि ये अल्लाह पाक की बनाई हुई खिलकत में मखलूक जो अल्लाह पाक ने इंसान की जो वजाकता और तख्लीक है इसके अंदर आप रद्दो बदल कर रहे हैं, तगैयुर कर रहे हैं, इसको मुसला करार दिया गया तो मुसला जो है वो हराम है, तो इसकी हरगिज इजाजत नहीं है।
सुतूनों के दरमियान नमाज वाजिबुल यादा होती है क्या?
दो सुतूनों के दरमियान नमाज पढ़ना मकरू है लेकिन नमाज वाजिबुल यादा नहीं, वो सफ के मकरूहात में से है, नमाज इस शख्स की हो जाएगी, दोहराना लाजिम नहीं है।
ठीक है, सवाल है एसएमएस पे के दारुल ताला सुन्नत से सवाल है कि लोग कहते हैं कि अगर तहज्जुद की नमाज रेगुलर पढ़नी पढ़ी जाए तो फिर फर्ज हो जाती है, उसे हर सूरत में ही पढ़ना पड़ता है, कैंडली इस बारे में बताएं क्या बात है? यानी कैसे कैसे लोग बाज़ूकात बातें फैला देते हैं कि कोई एक आध दिन पढ़ना चाहे तो वो भी ना पढ़े, कहे कि ये फर्ज ना हो जाए, क्या कहेंगे?
कोई भी नफली अमल जो है वो आप मुस्तकिल करते रहें तो मुस्तकिल करने से वो फ़र्ज नहीं हो जाता या वाजिब नहीं हो जाता, तो तहज्जुद की नमाज भी आप पढ़ रहे हैं जैसे रमज़ान मुबारक में कई लोग पढ़ते हैं, मौका होता है उठे हुए होते हैं सहरी के अंदर तो पढ़ रहे होते हैं, तो अब ये नहीं कि रमज़ान के बाद उनके ऊपर तहज्जुद फ़र्ज हो गई, तहज्जुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज थी, बाकी सारी उम्मत के लिए जो है वो नफिल ही है, सुन्नत ही है, तो लिहाजा कोई मुस्तकिल भी पढ़े तो ऐसी सूरत के अंदर कोई हरज नहीं है। हाँ, जब आप कोई एक मुस्तकिल एक नफली अमल कर रहे होते हैं तो उसे छोड़ना मुनासिब नहीं होता, तो उसके अंदर इस्तिकामत के साथ उसे अदा करते रहना चाहिए ताकि उसकी बरकतें आपको मिलती रहें, تو یہ عموماً صوفیہ جو ہے وہ اپنے اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نفلی عمل جب آپ کریں تو وہ مستقلاً کریں، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کریں، اور پھر جب آپ کی ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دے دی ہے، اس چیز کے اوپر ہمت دے دی ہے اور آپ وہ کر رہے ہیں، تو اب اس توفیق سے بندہ جو ہے وہ پھرے نہیں، اب اس کو کنٹینیو جو ہے وہ کرے. عموماً جو ہے وہی بات ہے کہ آپ کسی عمل کے آغاز میں آپ کو مشکل ہوتی ہے، لیکن جب آپ کی وہ عادت بن جاتا ہے تو اب اسے جو چھوڑنا ہوتا ہے وہ آپ کی اپنی سستی کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے. اب وہ بسا اوقات عمل کرنا مشکل نہیں ہو رہا ہوتا. تو اب ایسی وقت کے اندر بندہ اس نعمت سے محروم ہو جائے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مناسب نہیں. تو اس اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے بندہ نہ پھرے، لیکن بہرحال فرض وہ پھر بھی نہیں ہوتا.
اور اس پر حدیث پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں فرمایا کہ عمل اگرچہ تھوڑا ہو
مستقل ہو.
اور بہرحال جب جب بھی موقع ملے تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، اور یہ بڑی عظیم سعادت ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سوئیں گے تو اس وقت اٹھ کر جو نفل پڑھیں وہ تہجد کہلاتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ سوئیں گے پھر آپ جب اٹھیں گے تو وہ تہجد کے نوافل ہے وہ کہلاتے ہیں. چاہے آپ تھوڑی دیر سو گئے، آپ نے نیند کی آدھا گھنٹہ سو گئے، آپ نے کچھ دیری نیند کی، آدھا گھنٹہ بھی ضروری نہیں ہے، کچھ دیری آپ کی آنکھ لگ گئی، تو یہ ہوا تہجد کا وقت گویا کہ ہو گیا. یعنی لوگ سمجھے کہ شاید آخری وقت وہ فجر سے کچھ دیر قبل کا وہ تہجد کا وقت ہے. رات 12 بجے بھی تہجد کا وقت ہو سکتا ہے، 1 بجے بھی ہو سکتا ہے، 2 بجے بھی ہو سکتا ہے، 10 بجے بھی ہو سکتا ہے کہ عشاء پڑھ کے آدمی سو گیا تھوڑی دیر پھر اٹھ گیا، تو اب جو نوافل اس نے پڑھے تو وہ تہجد کی نماز اس کی ادا ہو جائے گی. تو آپ انشاءاللہ اگر ارادہ رکھتے ہیں لوگ فجر سے کچھ دیر قبل، یعنی فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے اس سے بھلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے کا اپنا معمول بنا لیں کہ اٹھ جانا ہے، اس ٹائم تہجد بھی پڑھ لینا ہے، کچھ قرآن پاک پڑھیں گے، ساتھ ہی فجر کا وقت ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی رہے گی، ثواب کا ذخیرہ بھی حاصل ہوتا رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے احکامات خود بھی سیکھ کر، سمجھ کر، درست طریقے سے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. محرم شریف کا مبارک مہینہ ہے. امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر تمام شہیدان کربلا، اسیران کربلا اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کو زیادہ سے زیادہ اسالے ثواب کیجئے، نظر و نیاز کا اہتمام کیجئے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ بھی پائیں گے، آپ کے مرحومین بھی پائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.